भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर इस्कान झांसी में सायंकाल की भगवद गीता के सत्संग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं ब्रजभूमि प्रभु और यहाँ के भक्तों का, हमको सेवा का अवसर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी, जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित है, उसका आधार है भगवद गीता यथारूप। भगवद गीता यथारूप के ऊपर अपना ये कृष्ण भावना अमृत संघ आधारित है, उसका आधार ही भगवद गीता है। सो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। गीता में हृदय भगवान कहते हैं, गीता मेरा हृदय है। तो हृदय आदमी उसको देता है जिससे प्रेम करता है। तो अर्जुन से भगवान को अर्जुन बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं स्तोषी में दृढ़म इति, हम आप मुझे बहुत प्रिय हो। तो भगवान को जो भक्त प्रिय होते हैं उनके लिए भगवान के हृदय से ये भगवत वाणी प्रवाहित होके बाहर प्रकट होती है। तो इसका एक अर्थ सीधा ये निकलता है कि जिसको भगवद गीता समझनी है उसको भगवान का प्रिय होना चाहिए। और भगवद गीता का ये 12वां अध्याय जो भक्ति योग का है, इसमें विशेष रूप से भगवान को प्रिय कैसे हुआ जाए इसका वर्णन विस्तार से किया हुआ है कि भगवान को प्रिय कैसे हो जाए। भगवान कहते ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। 9वें अध्याय भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे अनन्य भक्त है उसके अतिरिक्त कुछ मेरा ज्ञान यज्ञ से उपासना करते हैं, वो तीन प्रकार के हैं। एक तो विश्वरूप की उपासना करते हैं, एक अलग अलग देवताओं को भगवान के अंग मान के उसकी उपासना करते हैं, और कुछ लोग अहम ब्रह्म की उपासना करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये जो मैं ब्रह्म हूं, एक त्वेन पृथक त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, तो जो एक त्वेन था ये अर्जुन के दिमाग में था कि अपने आप को भगवान समझ के उपासना करते हैं वो कैसे होंगे। तो 9वें अध्याय में ये भगवान ने बात की, 10-11वें में विश्वरूप की बात हो गई, 9वें अध्याय में देवताओं की उपासना की बात हो गई, 10वें अध्याय में विभूति योग हो गया। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न था, ये एक त्वेन क्या है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात सच्चिदानंद विग्रह स्वयं भगवान की उपासना और भगवान के ब्रह्म रूप की ब्रह्म की उपासना, इसमें क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछा 12वें अध्याय में। तो 9वें अध्याय से ये प्रश्न उठा है और इस प्रश्न को अर्जुन 12वें अध्याय में पूछ रहा है। एवं सतयुक्ता ये भक्तास्तम परिपास्ते चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्मा। ये मायावादियों का प्रश्न नहीं है, मायावादी पहले हो गए, वो तो 9वें अध्याय में हो गए। हाँ, उनके लिए तो ये आया श्लोक, अवजानंती माम मूढ़ा मनुष्य तनु आश्रितम परम भाम अजानंतो मम भूत महेश्वरम मोघाशा मोघ कर्मण मोघ ज्ञान विचेतस। उनके लिए तो बोल दिया वो काम के नहीं है, लेकिन ब्रह्मवादी बहुत महान है, जैसे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी बाद में भगवान की लीलाओं में आकर्षित हुआ, ऐसे चार कुमार सनक आदि ये ब्रह्म आनंद का रस ले रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु के चरणों की तुलसी और चंदन का सुगंध से सौरभ से उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, भगवत प्रेम। तो ब्रह्म आनंद, तो एक ब्रह्म की उपासना करते हैं जो अव्यक्त है निर्विशेष है, और दूसरे भगवान आपकी उपासना करते हैं, इनमें योग वित्तमह कौन है? योग वित्तमह का मतलब है योग वित्त, योग वित्त वितर, योग वित्तमह, जैसे योग वित्त योग वितर योग वित्तमह, मतलब सर्वश्रेष्ठ कौन है। जबकि भगवान छठे अध्याय में पहले ही निर्णय करके आए हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते माम समय युक्तत्वो मतः। तो वहां युक्तत्वो कर्मता का है और यहां योग वित्तमह दोनों का अर्थ एक ही। तो भगवान पहले कह के आए हैं लेकिन अर्जुन को वो समझ में नहीं आए, इसलिए कहते हैं जब तक पूछता नहीं आदमी तो सब बातें समझ में नहीं आती है, जब पूछते हैं कोई समझाता है तो मन में अटकता है। इसलिए एक ही ये सनातन वैदिक धर्म है जिसमें प्रश्न पूछने का अधिकार है, अन्य स्थानों में जो कहा गया वो मानो और कुछ पूछना नहीं है। तो ये पूछने की मर्यादा, ये सबसे अच्छा शिक्षा की पद्धति, सबसे उत्तम शिक्षा की पद्धति है संवाद, जो भगवद गीता है कृष्ण अर्जुन संवाद, प्रश्न उत्तर में समझने का प्रयास करना। तो गुरुकुल पद्धति में सबसे उत्तम पद्धति पढ़ाई की कौन सी है? तो कहते हैं संवाद सबसे उत्तम पद्धति, यह सबसे उत्तम शिक्षा की पद्धति भगवान श्री कृष्ण ने अपनाई है, संवाद। सम्यक वाद, शिष्य और गुरु के बीच में चर्चा हो और भगवत तत्व को समझने की जिज्ञासा हो, उसको संवाद कहते हैं। दुनिया में सारी बकवाद होती है, हाँ, ये दुनिया वाले सारे बकवाद करते हैं और विवाद करते हैं, संवाद जो है वो भगवत जानने, भगवान को जानने के लिए होता है। तो भगवान ने उत्तर तो दे दिया एक श्लोक में, मय्यावेश मनो ये माम नित युक्ता उपासते श्रद्धया परमपोता ते में युक्तत्व मत। भगवान ने उत्तर तो एक श्लोक में दे दिया कि श्रद्धा से जो नित्य शाश्वत सदा मेरे मुझसे प्रेम करता है सतयुक्ता ये, वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर तीन श्लोकों में ब्रह्म उपासना वालों का वर्णन किया, दो श्लोकों में आठ विशेषण दे दिए कि जो अव्यक्त है, जिसका चिंतन किया नहीं जा सकता है, जो इंद्रियों से परे है, जो कूटस्थ है, उसको पाने के लिए सर्वभूत हिते रता सबसे भलाई करने का सोचना पड़ेगा। तो ये विशेषण दे के बोला वो भी मेरे पास आएगा, लेकिन मेरे पास कहाँ आएगा? ब्रह्म ज्योति में आएगा, वो मेरे गोलोक धाम में नहीं आएगा, वो मेरी ब्रह्म ज्योति में आएगा। और फिर अब ब्रह्म उपासना वालों के लिए आखिरी श्लोक ये कहते हैं जो आज हमको पढ़ना है। इस श्लोक के बाद भगवान भक्ति का, भक्ति के लिए एक सीढ़ी रख के बता रहे हैं कि तुम कहां से शुरू कर सकते हो, यहां से यहां से यहां से, जैसे रस्सी कोई ऊपर से नीचे डाले कि इसको पकड़ो मैं ऊपर से खींच लेता हूं, वो फिर चार पांच श्लोकों में उसका विशेषण है, और फिर भक्त के लक्षण जो भगवान को प्रिय है। तो आज के श्लोक का पाठ कीजिए, क्लेशो अधिकतर तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहबदभिरवाप्यते। तो भगवान ने अर्जुन को कहा क्लेशो अधिकतर, क्लेश तो कहते हैं, किसको क्लेश कहते हैं, दुख को, तकलीफ को, संकट को, परेशानी को, अधिकतर मतलब ज्यादा है। वैसे भगवान की प्रेम से भक्ति करने में भी मेहनत तो लगती है। सुबह सवेरे उठना है 4 बजे, ठंडे पानी से नहा लेना है सर्दी में, अभी तो गर्म हो गया, नहीं तो पहले धूप में हम वो पीतल के बर्तन में धूप में रखते थे, फिर उसको कंबल ओढ़ के रखते थे, सुबह उसी से 4 बजे स्नान करते थे। तो ये तो इतने चूल्हा जलाना मुश्किल है, सुबह से कहां से लकड़ी लाएगा, कहां से ईंधन है, चूल्हा नहीं जलता था सुबह घरों में, ये चाय तो थी नहीं इसलिए चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं थी। यहां तो सुबह सुबह दही का मंथन कर लेते थे, मक्खन निकाल लेते थे, आटा पीस लेते थे, फिर अच्छा सा पराठा बना के मक्खन दे के बच्चे को खिलाते थे, कुछ चाय वाय का झंझट था नहीं। तो आग तो सुबह जलती नहीं घर में, जैसे घर में सुबह आग जलती है उसे घर में रोज झगड़ा होता है, आग तो झगड़े की निशानी है और क्या। जब से ये चाय आई है तब से झगड़ा चालू हो गया सुबह सुबह, चूल्हा जलाना ही नहीं होता था, क्या करेगा चूल्हा जलाने की। हमें मालूम है, हमें मंदिर की पूजा करनी होती थी सुबह सुबह माघ के महीने में, जनवरी में, अब सुबह 5 बजे पानी गर्म, वही रोज धूप में रखते थे ऊपर, फिर उसको कंबल से ढक के सुबह उसे ताजे पानी से नहाते थे, हमें याद है ये। तो तकलीफ तो है इसमें भी, ऐसा नहीं कि भक्ति में, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ है। साधन में, भगवान की पूजा करने के साधन में और ब्रह्म चिंतन के साधन में बड़ा अंतर है, उसमें क्लेशो अधिकतर, उसमें अधिक क्लेश है, इसमें थोड़ा है उसमें ज्यादा है। क्यों इसमें थोड़ा क्यों है, बोला कम से कम भगवान सामने दिख तो रहा है, उसकी शक्ल दिख रही है, उसके कपड़े का रंग दिख रहा है, उसको भोग लग रहा है, प्रसाद बाहर आ रहा है, प्रसाद मिलना है, मिल रहा है खाने को, तो कम से कम उसमें कुछ मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं तो कुछ फल भी मिल रहा है, तत्काल मिल रहा है, रसगुल्ला मिल रहा है कि रबड़ी मिल रही है कि खीर मिल रही है ना। और ब्रह्म का चिंतन करने में क्लेशो अधिकतर तेषम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त है, जिसका न कोई रूप है, जिसका न कोई रंग है, उसमें आसक्ति कैसे हो। आसक्ति उसमें होती है जिसकी कोई शक्ल होती है। भले खंभे से किसी ने कभी प्यार किया क्या, कोई खंभे को पकड़ के खड़ा होता है उससे प्यार से बातें करता है क्या, भाई कुछ नहीं दिखता है उससे कैसे बात करेगा। भाई जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, जो बोलता नहीं है, आपसे व्यवहार नहीं करता है, उससे आप कैसे प्रेम कर सकते हो, उससे उससे तो हमारा संबंध स्थापित करना ही संभव नहीं। तो अव्यक्ता आसक्त चेत सम, अव्यक्त में चित्त को आसक्त करना मुश्किल है। हाँ, कोई कहता है लाइट का ध्यान करो, अरे लाइट का क्या, रात को बंद करते तब नींद आती है, सर के ऊपर पड़ी हुई तो ध्यान क्या होगा, परेशान होगा। लाइट का ध्यान करो बोलते, लाइट को देखते रहो, लाइट में, लाइट क्या देख रहे, लाइट देखने से कुछ प्रेम आए प्रकट होता है क्या, लाइट देखो, आंखें बंद कर दो, आंखें बंद करने से भगवान मिलता तो सब अंधों को मिल जाए क्या, ये कौन सी कथा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे भगवान का श्रृंगार कराना खुली आंखों की समाधि है, आंख देखती है भगवान की, कान देखना है, कान में वो मकर कुंडल डालने हैं, गले में माला डालनी है, फिर भगवान को चंदन लगाना है, तो ये तो भगवान के अंग अंग का ध्यान करना है। तो ब्रह्म अव्यक्त है, अव्यक्त मतलब व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता है, उसमें चित्त कैसे आसक्त होता, चित्त का मतलब होता है चेतना, तो उसमें चेतना लगेगी कैसे, आसक्त नहीं हो सकती। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त में गति, गति का दो अर्थ है, एक गति का अर्थ है किसी चीज को पाने के लिए तेज गति से जाते हैं कि आस्ते जाते हैं, तो उस रास्ते में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, उसमें गति बहुत धीमी है। और दूसरा गति का अर्थ है गंतव्य स्थान। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्ते के रास्ते में आगे चलना दुखदाई है, उसमें बहुत देर लगती है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, मन तो एकाग्र होता नहीं है, मन मानता नहीं है, मन इधर उधर भागता है, तो इसलिए उसमें बड़ा दुख होता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवद भीर अवाप्यते। अब कहते हैं आपको तो है शरीर और आप ध्यान करते हो बगैर शरीर वाले का, ये कैसे होगा। जब आपको शरीर है, आपको आंख है, आपको कान है, आप कैसे कहोगे भगवान को आंख नहीं है कान नहीं है, उसका ध्यान करोगे कैसे? तो तुम्हारे को तो है शरीर और तुम ध्यान करते हो बगैर शरीर वाले का, तो उसमें करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो श्री प्रभुपाद ने श्लोक के अर्थ में लिखा है, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त मतलब ब्रह्म निराकार स्वरूप के, निराकार मतलब जिसको कोई आकृति नहीं है, प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। प्रगति करना मतलब गति, आगे बढ़ना बहुत कठिन है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भाई हमारे को शरीर है तो हम बिना शरीर का ध्यान कैसे करेंगे? हमको शरीर के स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर के ऊपर रहकर भी भगवान के स्वरूप का ही ध्यान करना है। कभी कभी इसकी इसका अर्थ ऐसे निकालते हैं जो दूसरे प्रचारक हैं, देह अध्यास से ऊपर उठने से ब्रह्म का चिंतन होगा, लेकिन देह अध्यास से ऊपर उठने से भी ब्रह्म भगवान जब 14वें अध्याय में कहेंगे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्, ब्रह्म का भी आधार मैं हूं, ब्रह्म मेरे ऊपर टिका हुआ है, तब क्या कहेंगे? तो ये इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य, अचिंत्य मतलब जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जो हमारे चिंतन में नहीं आ सकता। चिंतन करना किसका काम है? मन का। चिंतन मन से होता है, तो जिसके पास मन का तो पहुंच है ही नहीं, इंद्रियों से परे है, और दूसरा है निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, स्वरूप के पथ का अनुसरण करना करता है ज्ञान योगी कहलाता है। पहले तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये ब्रह्म उपासना वाले कौन होते हैं? बोले ज्ञानी, ये निराकार निर्विशेष वाले हैं, लेकिन मायावादी नहीं है। ये जो प्रसंग है ये मायावादियों का नहीं, ये ब्रह्मवादियों का है। 12वें अध्याय में मायावादी का अर्थ है भगवान जब अवतार लेता है तो उनका शरीर माया का है, लेकिन ये ऐसा नहीं मानते हैं। ये कहते हैं जो अव्यक्त ब्रह्म है वो अब धरती के ऊपर अवतार लेकर आया है, लेकिन इसका शरीर माया का है ऐसे नहीं मानते हो। वो भगवान का, भगवान के रूप का, भगवान के चरण कमलों का, भगवान के अंगों का निरादर नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं आप भगवान की प्रार्थना करो जैसे मायावादी करते हैं, भगवान आपकी ना आंखें हैं ना हाथ है ना पांव है ना कान है ना मुख है, ये प्रार्थना है। तो प्रभुपाद जी के इसका अर्थ है आप भगवान को कहते हो आप काने हो, आप लूले हो, आप लंगड़े हो भगवान, तो क्या ये भगवान प्रसन्न होगा इस प्रार्थना से? किसी को कहना कि तेरा हाथ नहीं, तेरा पांव नहीं, तेरा नाक नहीं, तेरा कांख नहीं, तेरा कान नहीं, तो क्या लूड़ा है, लंगड़ा है, काना है, टेढ़ा है, टपड़ा है, क्या है? तो ये को भगवान को प्रसन्न करने का है प्रार्थना है क्या? हाँ, वो जब ऐसे क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं त्रिभंग ललितम श्याम सुंदर, कितना बड़ा है विरहा पीड़म नटवर वपु करणियो करणिकार, ये तो सुंदर मोर पंख लगा हुआ है, वैजंती माला पहनी हुई है। अभी ऐसा ऐसा बीच ध्यान करने में, ऐसा कहने में भगवान को अच्छा लगेगा कि भगवान आपकी आंख नाक पांव कान कुछ नहीं है ऐसे कहना अच्छा लगेगा? तो ये कौन सी प्रार्थना है? वो प्रार्थना सामने वाले को कोई बड़ा है, गुरुजी कैसे है? महाराज महाराज आप तो बिल्कुल अव्यक्त ब्रह्म लग रहे हो, ना आपकी आंख है ना पांव है ना कान है। अरे महाराज कहेगा क्या मैं कुछ ये कौन सी मेरी पूजा कर रहे हो भाई ऐसे कहना, ऐसे क्यों कहेगा? बोला आप कुछ कुछ खाएगा नहीं ब्रह्म, कुछ खाएगा नहीं तो महाराज को देना लेना कुछ नहीं है, राम राम जहां सेवा नहीं करनी होती है वहां ऐसे करना पड़ता है कि महाराज आप तो ब्रह्म हो, आपको कोई भूख थोड़ी लगती है, आप बैठे रहो हम खा लेते हैं ये क्या लोग करते हमको समझ में नहीं आता। तो ऐसी उपासना करने वालों को ज्ञानी बोलते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। तो प्रभुपाद जी पहले कहते हैं यहां तुलना किसकी हो रही है, ज्ञान योगी की और भक्ति योगी की, इन दोनों की तुलना हो रही है। और भगवान कहते हैं भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान योगी का रास्ता बहुत कठिन है, पहुंचेगा वो भी वहीं। एक अन्य स्थान पर प्रभुपाद ने कहा ज्ञान योगी ऐसे ढूंढता है जैसे कोई कहे कि पेड़ कैसे खड़ा है, कहीं जड़ है उसके आधार पे खड़ा है ना, तो कहता है ये डाली के ऊपर तो टिका हुआ नहीं है, पत्ते के ऊपर टिका हुआ नहीं है, तना है लेकिन नीचे जड़ है उसके ऊपर टिका हुआ है। तो जड़ तक पहुंचेगा ज्ञानी, लेकिन भक्त क्या करता है जड़ में जाके रोज पानी डालता है तो पेड़ हरा भरा रहता है। तो दोनों जड़ के पास जा रहे हैं, एक ढूंढ के पहुंच रहा है एक पहले से जान रहा, तो दोनों पहुंचते वही है ये भगवान कह रहे हैं। लेकिन एक पहुंचता है दरवाजे के पास और एक पहुंचता है कमरे के अंदर। भाई मंदिर का चौकीदार है वो भी मंदिर में रह रहा है कहता हूं, लेकिन वो पुजारी नहीं है, अंदर नहीं जाता है, बाहर ही बैठा रहता है। तो ब्रह्म वाले बेचारे बाहर बैठे होते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं, प्रसाद वरसाद जब भोग लगता है तो अंदर जाना आना पकाना ये उनका काम नहीं होता, तो वहां जाएंगे वो भी भगवान के ही पास, ये बात है। यहां पर ज्ञान योगी तथा भक्ति योगी में निश्चित अंतर बताया गया है। निश्चित क्या अंतर है, निश्चित निश्चय करके अंतर बताया गया। ज्ञान योगी का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक। उसी लक्ष्य तक पहुंचता है मतलब भगवान के ब्रह्म ज्योति तक पहुंचाता है, लेकिन है बहुत कष्ट वाला। अब आपको कष्ट वाला चाहिए कि आराम वाला चाहिए, थोड़ा तात्पर्य मेरे ख्याल में लंबा है, कल इसी को पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी एक कुंभ मेले के अंदर एक बार हमारे भक्त गए विदेशी प्रभुपाद के शिष्य, तो कोई ब्रह्मवादी बैठा था, बोला इधर आओ आपको ब्रह्मचिंतन सिखाते हैं, आओ आपको ध्यान सिखाएंगे आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। उसने बोला फिर क्या मिलेगा, बोला फिर ब्रह्म मिलेगा, बोला ब्रह्म मिलेगा फिर रसगुल्ला मिलेगा, बोला रसगुल्ला क्या होता है, बोला हम भगवान का सुबह आरती करते हैं रसगुल्ला मिलता है, बोला ब्रह्म में रसगुल्ला नहीं, बोला तेरा ब्रह्म तेरे पास रखो, हमको तो वो भगवान चाहिए जहां गुलाब जामुन और रसगुल्ला मिलता हो, तेरे ये ब्रह्म का चिंतन करने से हमें कुछ लेना देना नहीं। वो भगत भाग के आ गया वहां से, बोला कौन सा चिंतन तुम कराएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, चुप करके ऐसे बैठे रहो तो इसमें क्या मिलने का। तो ये दोनों की तुलना की गई है, कल इस तात्पर्य को लंबा है पढ़ेंगे। क्या समय हो गया, 10-15 मिनट है, इसको कोई पढ़ लेगा, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखो। हरे कृष्ण, आगे क्या कहते हैं श्री प्रभुपाद जी, पढ़िए थोड़ा सा। हाँ इसका बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नहीं जो चार लाइन में पढ़ी उसके बाद,
यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह सही नहीं है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर लकड़ी या तैलचित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता, परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक छोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिसमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर
हरे कृष्ण
पहुंच जाते हैं।
तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, पहले तो ये लिख रहे हैं कि आत्मा सक्रिय है, हमारी इंद्रियां हैं, किसी न किसी काम में लगनी चाहिए, उसको रोका नहीं जा सकता। और हमारे को शरीर है, इसलिए शरीर तो कुछ करेगा। आप जेब में हाथ डाल के भी चार घंटे सर्दी में भी नहीं बैठ सकते, हाथ निकालना पड़ेगा, तो चुप करके तो नहीं रह सकते हो। इसलिए भगवान की वेदों के अंदर साकार विग्रह की पूजा का विधान है। अब जब पूछते हैं, ब्रह्मवादी कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, अरे भाई सर्वत्र है, हम मानते हैं सर्वत्र है, तो क्या ये जो भगवान का हमने यहां विग्रह रखा है इसमें है कि नहीं है? बोला इसमें क्यों है? अरे भाई सब जगह है तो इसमें क्यों नहीं है? ये सब जगह हमें नहीं है क्या? जब भगवान सब जगह है तो इसमें क्यों नहीं है? अब जब प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव ने पूछे, हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहां है, बोला सर्वत्र है भाई सब जगह है, तो उसने कहा इस खंभे में है कि नहीं, तो भगवान खंभे के अंदर से निकला कि नहीं निकला? तो खंभे में था ना, अमर खंभे में उसको दिख रहा था। तो जिसकी अब खंभा तो मिट्टी का बना हुआ है ना, तो उसके अंदर प्रहलाद महाराज को कैसे दिखाई दे दिया नरसिंहदेव? तो भक्त को इस विग्रह के अंदर साक्षात भगवान दिखता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे रास बिहारी बात करते हैं, अगर आपको उनकी भाषा समझ में आए, उनकी भंगी समझ में आए। जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया, प्रभुपाद ने कहा भक्तों अब कृष्ण बलराम आ गए हैं, कोई समस्या है इनको जाके बोलो, हे भगवान श्री कृष्ण बलराम हमारी ये समस्या है, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बोलो भगवान से जाके बात करो, ये भगवान बात सुनते हैं। प्रेम से कोई खिलाता है तो खाते हैं, कोई पूछता है तो कहते हैं। एक तो गोपाल जी वृंदावन से चल के चले साक्षी देने के लिए, वो ओडिशा चले गए साक्षी गोपाल। तो ये तो भगवान भक्त के प्रेम से तो चल जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी उदाहरण क्या दिया, ये मूर्ति ऐसा नहीं है कि पत्थर है या कोई, जैसे बहुत से डब्बे बाहर कचरे के रखे हुए, उसमें चिट्ठी डालो तो आप जहां भेजोगे वहां नहीं जाएंगी, लेकिन पोस्ट के लाल डब्बे में चिट्ठी डालोगे तो जिसको भेजोगे उसको पास चली जाएगी। जैसे लाल डब्बा पोस्ट का सरकार की ओर से अधिकृत है, उसमें डालने वाली पत्र पहुंच जाएगा जिसको लिखा है उसको। ऐसे ये वेद ने अर्च विग्रह की उपासना को उस डब्बे से तुलना दी है, जिसकी पूजा करने से ये भगवान के पास चली जाती है, क्योंकि ये भगवान की ओर से स्थापित मार्ग है पूजा पद्धति का। और ऐसा नहीं है कि पहले पहले भगवान की पूजा करनी है, बाद में कर जरूरत नहीं है इसकी, नहीं, निरंतर सदा भगवान की पूजा करनी। वैसे भगवान की पूजा का विधान द्वापर युग में था। कली युग में मंदिर स्थापित कर पात करने के दो उद्देश्य हैं कृष्ण भावना अमृत संघ में। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में मंदिर स्थापित करने के लिए गोस्वामियों को कहा, उन्होंने मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव राधा रमन इन सब मंदिरों की स्थापना की, दारोदामोदर।